बीबीसी इंडिया बोल 28 अप्रैल दिन शनिवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। नाबालिग से बलात्कार के दोषी आसाराम को मिली उम्र कैद, देश विदेश में सैकड़ों आश्रम भक्तों की संख्या लाखों में। कैसे फैलता है धर्म का कारोबार, क्यों लोग आंखें बंद करके कर लेते हैं विश्वास, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपने मन की बात। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। 77 साल पुराना डालमिया भारत ग्रुप पहला उद्योग घराना बन गया है जिसने भारत की ऐतिहासिक विरासत लाल किले को गोद लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार की अडॉप्ट अ हेरिटेज नीति के तहत इस विरासत को गोद लिया गया है। डालमिया ग्रुप अब अगले 5 साल तक लाल किले की देखरेख करेगा और यहां लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके लिए भारत सरकार के साथ कंपनी का 25 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। दिल्ली में मौजूद लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ही हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा है कि प्रदेश के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और खुले में कूड़ा फेंकेंगे या फिर जो गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं होंगे वहां के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वितरित किया जाने वाला चावल का राशन देना बंद कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की मुफ्त चावल वितरण योजना अब प्रदेश में शर्त के साथ लागू होगी। इसके लिए अब स्थानीय विधायक और सामुदायिक युक्त जांच कर गांव के स्वच्छ होने का प्रमाण पत्र देंगे जिसे गांव वालों को सिविल सप्लाई कमिश्नर को सौंपना होगा। इसके बाद ही उन्हें राशन मिल सकेगा। साथ ही गांव वालों को ये भी बताना होगा कि उनके घरों और गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता। मलेशिया में आम चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक तौर पर नामांकन कर लिया गया है। चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता महातिर मोहम्मद। नजीब रजाक पर देश की निवेश निधि में लाखों डॉलर के भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश में 90 साल से अधिक उम्र के महातिर मोहम्मद इन्हीं हालातों के बीच लंबे अंतराल के बाद अब राजनीति में वापस कदम रख रहे हैं। लंकावी में एक द्वीप में महातिर मोहम्मद ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके समर्थक कटरूल नाचवा कहते हैं कि उम्र कोई मायने नहीं रखती।
What we've seen in recent weeks is Myanmar military firing on people living in displacement camps.
उनकी उम्र इसमें रुकावट नहीं हो सकती, वो बस एक कैटलिस्ट की तरह हैं। उनके साथ उनकी मदद करने के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। हमें बस उनके विचारों और अनुभव की जरूरत है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। वो हर समय मैदान में नहीं रहेंगे, हम होंगे जो मैदान में कामकाज देखेंगे। हम लंकावी का विकास करने में उनकी मदद करेंगे, महातिर मोहम्मद के समर्थक कटरूल नाचवा के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार के उत्तर में हाल के दिनों में हिंसा बढ़ी है जिसके कारण वहां से हजारों नागरिक पलायन कर रहे हैं। खबरों के अनुसार बर्मा की सेना, माफ कीजिएगा, म्यांमार की सेना जनजातीय कचिन विद्रोहियों पर हवाई हमले और जमीनी हमले कर रही है। विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि मौजूदा दौर 50 साल पहले शुरू हुए इस संघर्ष का सबसे बुरा दौर है। इस संघर्ष के कारण यहां 1,20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और यहां विद्रोही मुख्य रूप से ईसाई जनजातीय समूह के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार समूह 45 राइट्स में म्यांमार मामलों के विशेषज्ञ डेविड बॉल्क कहते हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमने हाल के हफ्तों में देखा है कि जो विस्थापित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, म्यांमार की सेना उन पर गोलीबारी कर रही है। हमने ये भी देखा है कि म्यांमार की सेना संघर्ष हो रहे इलाके में फंसे लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रही। मानवाधिकार समूह 45 राइट्स में म्यांमार मामलों के विशेषज्ञ डेविड बॉल्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल में स्वागत है सभी श्रोताओं का। पिछले दिनों जब ये खबर आई कि आसाराम को, जिन्हें संत आसाराम और आसाराम बापू भी कहा जाता था, उन्हें बलात्कार का दोषी पाया गया है, अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस खबर के आने के बाद ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि लाखों लोग कैसे इस तरह के बाबाओं के भक्त बन जाते हैं और कैसे बाबा देश विदेश में सैकड़ों आश्रम बना लेते हैं। क्या वजह होती है कि लोग आंख बंद करके इस तरह के बाबाओं के भक्त बन जाते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए समाजशास्त्री संजय श्रीवास्तव स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार
श्रोताओं, हमारे टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, 1811-7000 और 1811-7001। इससे पहले कि हम श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करें, समाजशास्त्री संजय श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय समाज में ऐसा क्या है कि लोग अंधभक्त बन जाते हैं?
समाजशास्त्रियों का एक बहुत पुराना सिद्धांत था कि जो भी समाज आधुनिकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन या कंज्यूमरिज्म, जिसे उपभोक्तावाद भी कहते हैं, के दौर से गुजरता है, वहाँ पे धर्म का वो महत्व कम हो जाएगा। अब जाहिर है कि ये सच नहीं है, क्योंकि हम अब बहुत बड़े बदलाव के दौर से भी गुजर रहे हैं। बदलाव के दौर में यानी कि जो पुरानी नौकरियां थीं वो नहीं है, नए तरह की नौकरियां लोग ढूंढ रहे हैं। घर में जो लड़कियां थे जो बाहर नहीं काम करती थी, वो बाहर काम करना चाहती हैं। तो इस दौर में लोग अपने आप से ये बहुत चीज़ों का जवाब चाहते हैं। तो इस माहौल में जो गुरु है, तरह तरह के गुरु हैं, वो एक काउंसलिंग सर्विसेज बन जाते हैं। सबको चाहिए कि पूछने की, कि सब तो ऐसे काउंसलर के पास जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये गुरु है, वो उसका रूप एक अपार रूप हो गया है कि वो किसी भी चीज़ का आपका वो जवाब दे सकता है या दे सकती हैं। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके यहाँ आपकी जो बेटी है उसे गर्ल बॉयफ्रेंड है, तो या जो बदलता हुआ सांस्कृतिक बदलाव है, जो कि आर्थिक बदलाव हैं, तो इन सभी चीज़ों का एक जवाब है वो, आजकल वो गुरु वही जवाब देने की एक क्षमता रखते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ गुरु एक काउंसलिंग, एक आधुनिक काउंसलिंग सर्विस है, ना कि सिर्फ ये धर्म का मामला। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। धर्म जो कुछ और हुआ करता था, वो उसका एक नया रूप है ये।
समस्याओं के समाधान की चाहत लोगों को पाखंडी बाबाओं तक पहुंचाती है, हम इसको सरल भाषा में इस तरह भी कह सकते हैं। श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, इस समय कौन हमसे जुड़ गया है? हेलो हेलो
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
जी नमस्कार।
जी नमस्ते
जी, बाड़मेर से कितनौरिया गांव से पठान बोल रहा हूँ।
जी बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात।
जी सर, मेरी तो राय ये है कि लोगों का दिल बाबा जीत लेते हैं, लोग भरोसा करते हैं, लेकिन बाबा ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि लोग तो कई इन पर विश्वास करते हैं, लोग तो भगवान मानते हैं, अब तो लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए इन पर।
दिल जीत लेते हैं, इनकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जी कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। ये जो राजस्थान वाले श्रोता थे, ये कह रहे थे कि बाबा लोग दिल जीत लेते हैं, तो ये दिल जीतना भी एक कला है, लेकिन क्या हमारा अपना बुद्धि विवेक उस समय काम नहीं कर रहा होता है, जो हम एक तरह से शब्द जाल में, मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं?
नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बात पे गौर करना चाहिए कि बाबा से, आप किसी भी बाबा के पास जाते हैं तो आपके जो सवाल होते हैं, बाबा अपने आप को सिर्फ वो सवाल तक ही नहीं सीमित रहता है, वो आपके कई सवाल देने का अपने आप को वो माहिर मानते हैं इस बात में। जैसे कि आप हम इतने गुथे हुए दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो पहले हमारे पास एक क्षमता थी, हमें गांव में रहते हैं, हमें सब कुछ हम किसी और से जाके पूछ सकते थे, अब वो मामला नहीं रह गया है। और अब बाबा टीवी पे भी आते हैं, बाबा रेडियो पे भी आते हैं, बाबा हवाई जहाज़ से बाहर भी जाते हैं, दुनिया भर में उनके 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 जो उनको मानने वाले लोग हैं। इसीलिए बाबा अब सिर्फ बाबा नहीं रह गए हैं, बाबा एक सेलिब्रिटी फिगर बन गए और हमारे यहाँ सेलिब्रिटी का बहुत बड़ी मान्यता दी जाती है। तो अब बाबा और फिल्म स्टार में फ़र्क नहीं पड़ गया, इसलिए दिल जीतना भी आसान है। जबकि कोई अगर बॉलीवुड का स्टार हमारा दिल जीत सकता है, उसी प्रकार हमारे बाबा भी हैं जो हमारे दिल जीतते हैं।
और संचार माध्यमों ने इसको और बढ़ावा दिया है।
बिल्कुल,
कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं इस समय, कौन हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
जी मैं सोनिया बोल रही हूँ।
जी रखिए अपनी बात।
जी अगर हम ये सोचें कि आखिर ये अंधविश्वास इतना क्यों फैल रहा है या लोगों का इस पे विश्वास क्यों बढ़ रहा है, तो मुझे जो लगता है वो रूट कॉज इलिटरेसी है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो होती है वो परिवार से ही हो जाती है, घर से होती है। जब बच्चा छोटा होता है तभी उसके गले में तालीम दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे वो बच्चा फिर बड़ा होता है और जिस तरह से अपने घर में अंधविश्वास को फलते फूलते देखता है, उसी तरह वो उसे भी आगे बढ़ के फॉलो करने लगता है। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें अंधविश्वास को ढकेलता है। और दूसरी जो संजय जी ने बात कही कि आजकल बदलाव के दौर में हम कहीं ना कहीं बाबाओं को एज काउंसलिंग सर्विस की तरह ट्रीट करने लगे हैं, तो मैं ये चीज इनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार जो बाबा के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं उनका सॉल्यूशन वो मिल ही जाता होगा या वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती होगी प्रॉब्लम। तो आखिर ऐसा क्या है कि वो लोगों का ब्रेनवॉश इतनी उससे करते हैं कि लोग नहीं भी सफल होते फिर भी उनके ऊपर लगातार भरोसा करते रहते हैं।
सोनिया जी आप लाइन पे बनी रहिए, संजय जी इसका जवाब देंगे। एक और श्रोता को इस समय हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी हेलो।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं रक्षा बोल रही हूँ।
जी रक्षा कहिए, रखें अपनी बात।
मेरा ये मानना है कि जो धर्म गुरु रहते हैं वो गलत नहीं होते, बट जो लोग उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं वो गलत रहता है। हमें लोगों तक साइंटिफिक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इन ये एजुकेशनल इलिटरेसी की बात है यहाँ पे, और लोग इतना इलिटरेट रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। धर्मगुरु रहना एक सही बात है, बट उनके ऊपर अंधविश्वास करना ये गलत चीज है।
ये राजेंद्र जी दो दो दूसरी तरह की बात निकल कर आती है। ये जो एक हमारे संजय जी एक जो श्रोता थी, रक्षा नाम बताया इन्होंने, और इससे पहले जो सोनिया थी वो भी ये कह रही थी कि अशिक्षा परिवार और ये बहुत सारी चीज़ों को घालमेल कर दिया है इन्होंने। इनकी बातों से और इनके तर्कों से कितने सहमत हैं आप?
मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन देखिए ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि 100% ये सही है कि अशिक्षा और बाबाओं में जो एक बिलीफ है वो उसमें बहुत ही इतना बड़ा जोड़ है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हर एक वर्ग के लिए अलग बाबा हैं,
पढ़े लिखे लोग भी तो झांसे में आते हैं।
बिल्कुल, हर अलग वर्ग के लिए अलग बाबा हैं, वो आप डिपेंड करता है कि क्या चाहिए आपको बाबाओं से, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे यहाँ जो परवरिश होती है वो इस प्रकार की है कि आप कभी बड़ों से सवाल ना करें, माँ बाप सवाल ना करें, बड़े भाई सवाल करें, दादा सवाल करें, इसी प्रकार बाबा आपके माँ बाप बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं। लेकिन शुरू से जो हमारे यहाँ परवरिश होती है कि आप बड़ों से सवाल ना करें, यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है कि आप बड़ों से सवाल ना करें और चाहे जो भी कहें वो आप मान के चलें। तो ये बात, ये जो कि परिवार के अंदर की बात, वो धर्म के अंदर आ जाती है। और ये जब बाबा आपके माँ बाप बन जाते हैं तो जो हमारी जो परवरिश हुई है जब तक इसे हम ना बदलेंगे, ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है कि हम बड़ों से उन सवाल क्यों ना करें, क्यों ना पूछें कि आप ये सही है गलत है क्या है। तो ये अंधविश्वास का मामला है, लेकिन मैं ये पूरी हद तक इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह शिक्षा का मामला है। क्योंकि ये तो चाहे अच्छे अच्छे पढ़े लोग भी बाबा के फॉलोअर्स हैं और जो अशिक्षित हैं वो भी बाबा के फॉलोअर्स हैं। मतलब कि आप तो हर एक वर्ग के लिए अलग अलग बाबा हैं, चाहे प्रभु रहीम है या और कोई बाबा हैं या बाबा या आसाराम जी।
और शुरुआत जो होनी चाहिए किसी भी तरह के पाखंड की या अंधविश्वास को खत्म करने की, वो घर से होना चाहिए। जैसे कि भी एक कॉलर कह रही थी कि बच्चा पैदा होता है और उसको बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज बांध दिया जाता है, तो जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा।
बिल्कुल हाँ जी, वो महत्वपूर्ण बात है कि जो परवरिश हमारी होती है वो क्या है, हम क्या सिखाया जा रहा है घर में, और मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि आपके साथ जो बड़ों ने किया जो कहा वो सच है, कभी इसके बारे में हम ना पूछे कि सच है कि गलत है।
तो इसको वैज्ञानिक सोच का अभाव, उसमें कमी और सवाल ना पूछने की आज़ादी इसको इस समस्या को और बड़ा कर देती है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
और हाँ, श्रोताओं को हाँ, शामिल करते हैं हम कार्यक्रम में।
बिल्कुल
जी, इस समय कौन हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी।
जी मेरा मानना है कि
पहले अपना नाम बताइए।
जी मेरा नाम रिया है
जी,
और मुझे लगता है कि जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं इन पे विश्वास करने का एक कारण शिक्षा और जागरूकता में कमी है। हमारे देश में अब भी अंधविश्वास व्याप्त है और इसका कारण हो सकता है कि लोगों के द्वारा मनगढ़ंत व्याख्या, उन्हें कोई तर्क नहीं पता होता है और लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घटित होती है और इसको वैज्ञानिक कारणों का पता ना होने के कारण भी उसे ईश्वर से जोड़ दिया जाता है और लोगों में एक अंधविश्वास भी आ जाता है, लोग उनसे डरने लगते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका विकास नहीं होता है, तो वे उस उम्मीद पर अंधविश्वासों को अपना लेते हैं कि उनका भला होगा और वे इन बाबाओं का सहारा लेने लगते हैं।
तो संजय जी, ये श्रोता जो कह रही थी कि मन गढ़ंत व्याख्या और जो एक डर होता है वो भी इस समस्या में बड़ा अपना अहम भूमिका अदा करता है।
बिल्कुल, और ये जैसे कि ये कह रही हैं, दिया जी कह रही हैं कि इसे धर्म का मामला नहीं है, इसे अगर और थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो जैसे कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह हैं, आप लोग जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो उम्मीद कैसे बनाए रखी जाए। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास ये ट्रेनिंग है नहीं है, ये कमी है। आप किसी बाबा के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं, इसका कोई और कारण, थोड़ी देर और रुक जाओ। और फिर मैं इस बात को, मैं जैसे कि अभी दिया जी ने कहा था ये कि अब हमारे में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि एक मूर्ति की आंख से दूध निकल सकता है या कुछ, या मतलब वो खून निकल सकता है या रोज रो सकती है, और ये सिर्फ अशिक्षित लोग नहीं मानते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों के बारे में गौर ना करें और ये ना हम मान के चलें, ये हम इसके बारे में ना सोचें कि धर्म, जो धर्म है, जो भक्ति है और जो धर्म से अलग जो दुनिया है उसमें क्या रिश्ता है, दोनों को सोच के ना चलें, तब तक मैं समझता हूँ कि तब तक लोग बाबाओं, इन प्रकार के बाबाओं का शिकार होते रहेंगे।
अच्छा, इसमें सरकारों की क्या भूमिका रही है वो हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में। और श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं इस समय, और कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय?
जी नमस्कार, मैं कर्मेंद्र बोल रहा हूँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से।
जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
जी मेरा मानना ये है संदीप जी, अभी हम वर्तमान में देखें सभी लोग, चाहे वो युवक हों चाहे किसी भी वर्ग के हों, तो सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो इनको एक चमत्कार की आशा होती है और ये कहीं से पूरा होता न देख वो इस तरह की बाबाओं की शरण में जाते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा जैसा कि अभी बात चल रही थी, हमारे जितने भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय उनको निरंतर गिरा रहे हैं, जो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसको आप एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी राजनीतिक दल का मंदिर बनाना मुद्दा हो तो ये उसको धर्म की आल से देखते हैं। या दूसरा, मैं एक हरिशंकर परसाई जी का एक कथन यहाँ पे लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि जो गाय होती है वो सभी पूरी दुनिया में दूध देती है, लेकिन हमारी भारतवर्ष में ये वोट देती है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण करके धर्म का इससे लोगों को बरगलाया जाता है। और आप देखते होंगे जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेता मठाधीशों के या जो तथाकथित धर्मगुरु हैं इनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में मैसेज जाता है कि जब इतने बड़े तबके के लोग इनसे जुड़ रहे हैं तो वो अंधभक्त की तरह उनका भेड़ चाल की तरह पीछा करने लगते हैं।
बहुत शुक्रिया कर्मेंद्र जी अपनी बात तर्कों के साथ रखने के लिए। संजय जी ये जो श्रोता थे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही,
बिल्कुल
चमत्कार शब्द का प्रयोग किया बिल्कुल। और शिक्षा तंत्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये चमत्कार तो खैर जो है सो है, शिक्षा तंत्र की भूमिका पर जो कह रहे हैं कि ये नाकाम रही है एक तरह से बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में, प्रेरित करने में। और फिर जब सरकार की भूमिका आती है, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है,
बिल्कुल,
तो आपको लगता है कि सरकारों ने इस दिशा में कुछ काम किया है कि ये जो पाखंड है, आडंबर है, इसका बाजार नापन पे कभी कुछ सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया है?
मेरे समझ से कर्मेंद्र जी ने ये मतलब ये भी कहना चाह रहे थे कि सरकार और पोलिटिकल पार्टी में फ़र्क है। पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनना चाहती है तो कई वो किसी भी तरीकों का,
वो गाय का जिक्र कर रहे थे कि पहले गाय दूध देती है लेकिन
उसके बाद वोट भी देती है। तो सरकार क्या करती है और एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। और पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनना चाहती है तो कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। और हमारे इतिहास में, हमारा जो आधुनिक इतिहास है, इसमें देखा गया है कि हमारी जो आधुनिकता है, एक रूढ़िवाद आधुनिकता, वास्तव की आधुनिकता मतलब टेक्निकल आधुनिकता है, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, फ्रिज हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। और जब तक उसके ऊपर गौर ना किया जाए, इसी में शिक्षा का बहुत ही बड़ा एक इसमें रोल बनता है। और जैसे कि कर्मन जी ने ये भी कहा कि चमत्कार की एक उम्मीद रहती है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रतियोगिता भी बहुत है तरह तरह की। जैसे आप भी आज भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ज़्यादातर हम चाहते हैं बच्चों के कि वो इस कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, लेकिन 1000 जो उसमें जगह हैं उनके लिए अगर 500,000 लोग बैठेंगे तो कितनों को लोग मिलेंगे? तो उसमें फिर लोग सोचते हैं कि भाई मेरा क्यों नहीं होता है और कैसे हो, इतने लोगों के साथ मेरी प्रतियोगिता है। तो इसमें भी बाबाओं का बहुत बड़ा एक रोल है। और जैसे कि आपके अभी जो ये कन्वेंशन जी ने कहा कि मतलब इसमें शिक्षा के एक अभाव, और मैं समझता हूँ कि जान बूझ कर इसमें पॉलिटिकल पार्टी, मैं सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा अलग अलग दृष्टि देखना चाहता
हूँ। लेकिन मैं इस सवाल पे थोड़ा दूसरे तरीके से आ रहा था कि इस तरह की चीज़ों को दूर करना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है, बनती है, कानून व्यवस्था देखना है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की हैं। क्या सरकारों ने ये जिम्मेदारी ठीक से निभाई है कि ये सब पाखंड ढोंग का बाजार पनप ही ना पाए और सरकार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पद्धति को ठीक से लागू करे? यदि ये सब कुछ किया होता समय रहते तो जो कल बीज था जो आज पौधा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, जिसमें अब और अंधविश्वास के फल लटक गए हैं, वो ऐसा नहीं हो पाता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझता इसमें पूरी अच्छी तरह से किसी भी सरकार ने ध्यान दिया है, क्योंकि आखिरकार अगर इस बात को बिल्कुल हटा दिया जाए हमारे समाज से, तो फिर जैसे कि कर्मन जी ने कहा कि फिर इस पर जो वोट के जो काम आता है, जो सोच, फिर उसका क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी खामी रही है। और इसीलिए कुछ हद तक मैं मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सरकार की नहीं है, ये हमें भी सोचना है कि हम कैसी परवरिश दे रहे हैं, अपने परिवार में हम क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार के स्कूल किस में एक शिक्षा मिल रही है, लेकिन घर में हम किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में सोचना जरूरी है।
समाज शास्त्री संजय श्रीवास्तव जी के साथ बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा जारी है। चर्चा हम कर रहे हैं पाखंडी बाबाओं के चक्कर में लोग क्यों फंस जाते हैं। फयाज आलम इकबाल फेसबुक पर हमारे एक पाठक हैं, श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि जो लोग अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ते वही लोग ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं की किसी भी बात को आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में फल फूल रहा है। फैयाज आलम इकबाल। एक और पाठक श्रोता हमारे लिखते हैं अशोक कुमार, क्योंकि हर काम हम भगवान और बाबाओं के भरोसे छोड़ देने की मानसिकता के साथ ही पैदा हुए हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिमाग भी दिया है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर नहीं करते हैं। शीशे के उस पार बैठकर दीपक जसरोटिया कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कीजिए। कौन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं?
हाँ
जी,
बोल रहा हूँ साहब।
कौन साहब बोल रहे हैं?
शंभू शरण।
शंभू जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
हाँ हाँ, हमारा सबमिशन है सर
जी
कि ये जो बाबाओं का ये पूरा का पूरा इनका मार्केटिंग, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो इनकी मार्केटिंग है, जितने मतलब आज के मॉडर्न उसके अंदर है, ये सारा का सारा और जितना पहले के वो परिपाटी है ये दोनों का ये ब्लेंड प्रस्तुत करते हैं, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं। दूसरा है क्या कि एक पक्ष कि ये लोग मतलब ये बड़े बड़े लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल हैं जैसे डॉक्टर हुए नेता हुए इनके पास लोग जाते हैं अपने अपने कामों से, तो लोगों को भी ये अपना मतलब ये क्या नाम है अपने सानिध्य में रखते हैं, और जब लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं तो वो मतलब उनको उनके अंदर ये बात आती है कि भाई इतने बड़े बड़े ये तो मतलब बेवकूफ़ नहीं हो सकते हैं, अब कोई डॉक्टर ही जाए कोई नेता ही जाए तो वो मतलब एक दूसरा सिग्नल समाज।
जी शंभू जी, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मार्केटिंग वाले पहलू पर हम आएंगे, इससे पहले एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं फौरन। जी कौन सा बोल रहे हैं?
हम नसीरुद्दीन बोल रहा हूँ।
जी कहाँ से बोल रहे हैं?
सर मैं गाजीपुर के वाजिदपुर गांव से बोल रहा हूँ।
जी रखें अपनी बात।
असल बात ऐसी है सर, ये पूरी जो व्यवस्था है और मतलब जो बराबर चली जा रही है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के चुनाव लड़ने वाले ये तमाम लोग इनके आशीर्वाद लेके जब चुनाव लड़ते हैं और देखते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल गया तो मैं प्रधानमंत्री बन गया राष्ट्रपति बन गया, जैसे आपने बीवी श्रीलंदन ने सुनाया अटल बिहारी वाजपेयी का सुनाया नरेंद्र मोदी का सुनाया।
और ये बात हम आपको यहाँ पर थोड़ा दुरुस्त करना चाहेंगे, ये बात किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, ऐसे ऐसे नेता हर पार्टी में मौजूद हैं जो शुभ मुहूर्त देखकर और तमाम तरह की करके, और उनके भी तमाम इस तरह के जो जिन्हें अच्छे शब्दों में धर्मगुरु कहते हैं, तमाम पार्टी में ऐसे लोग हैं जो धर्मगुरुओं के साथ उठते बैठते हैं, इसलिए किसी एक पार्टी तक इस बात को सीमित नहीं किया जा सकता।
पार्टी हम वही आ रहे थे, राहुल गांधी जो मंदिरों में कभी नहीं जाते थे लेकिन वो वहां जाने लगे, तो इसलिए कि हमारे देश की जनता इस भ्रम में है कि बाबाओं का आशीर्वाद इनको मिल गया है और बाबा चाहेंगे तो चुनाव जीतना है, जो भी बाबा भगवान के प्रतिरूप होते हैं या भगवान से हमारा साक्षात दर्शन कराते हैं, हमारी तकलीफों को दूर करते हैं।
जी जी, ये मंदिरों में जाने में कोई बुराई नहीं है, मस्जिदों में जाने में कोई बुराई नहीं है, गिरजाघरों में जाने में कोई गुरुद्वारों में जाने में कोई बुराई नहीं है, बात हो रही है पाखंड और आडंबर की। कार्यक्रम में अगले श्रोता को शामिल कर रहे हैं। जी
जी हेलो।
जी कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ, मोहम्मद जुनैद अली।
जुनैद साहब रखिए अपनी बात।
सतना शहर से बोल रहा हूँ।
जी सतना उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश का शहर।
हाँ जी जी बिल्कुल सही,
रखिए अपनी बात।
जी जी, मैंने चर्चा आपके बड़ी ध्यान से सुना, लेकिन एक बात जो सबसे मतलब गहराई वाली बात है कि जब तक कोई मतलब व्यक्ति या कोई मानव किसी मानव को ईश्वर का दर्जा या उसके समतुल या समकक्ष या साझीदार बनाता रहेगा तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि यही वो माध्यम है जहाँ से सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये समझना अनिवार्य है सभी के लिए कि बाबाओं द्वारा की गई बातें उनके प्रवचनों का वास्तविक आधार क्या है, क्या उनकी कथनी और करनी सत्यता व नैतिकता का वास है कि नहीं। समस्याएं सबसे ज्यादा तभी जब ले लेती है कि उनका जो अंधा अनुसरण चाहे परंपराओं के नाम पर हो चाहे रस्मों के नाम पर हो चाहे बाप दादा से जो चीज आगे आई है उसके नाम हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, तो ये चीजें बहुत मतलब की गहराई की बातें हो जाती है।
जुनेद जी, जुनेद जी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, समय कम है, अगले श्रोता को शामिल करेंगे, मुझे माफ कीजिएगा आज आप। इस समय कौन श्रोता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास आएंगे। जी
जी
कौन सा?
आत्मा चौहान उत्तर प्रदेश से बोल रहे।
जी चौहान साहब रखिए अपनी बात।
सर जब जिसको अगुवाई करनी है जो देश को एक नई दिशा दिखा सकते हैं समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, जब वही अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं तो इस देश से अंधविश्वास जाएगा कैसे? जैसे इसरो की वैज्ञानिक जब रॉकेट छोड़ना होता है तो मंदिर में जाके पहले पूजा करते हैं नारियल तोड़ते हैं, तो अपने विज्ञान पे भरोसा ना रखिए भगवान पे ही भरोसा रहता है, तो इस देश का क्या होगा?
जी इस देश का क्या होगा जब वैज्ञानिक सोच की कमी विज्ञान और वैज्ञानिकों में नजर आए। संजय जी, इससे पहले वाले श्रोता कह रहे थे मार्केटिंग का एस्पेक्ट, समय कम है हमारे पास, जरा ये मार्केटिंग वाला क्या पहलू है ये समझाइए।
बिल्कुल, जबकि धर्म हमारा एक खरीद बेच वाला वस्तु ऐसा बन गया है तो लोग समझते हैं कि जैसे कि कल गाड़ी खरीद लेते हैं तो मतलब उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है, उस प्रकार धर्म को भी उस प्रकार बेचा जा रहा है, और इसके लिए कई माध्यम हैं, टेलीविज़न है और कई गुरु तो खैर वो मतलब वस्तुओं वाकई बेचते भी हैं, तो इसमें बहुत बड़ा एक उपभोक्तावाद और हमारे जो धर्म में एक बहुत बड़ा एक रिश्ता बन गया है, और मार्केटिंग इसका बहुत ही बड़ा एक पहलू, बहुत बड़ा पहलू है कि धर्म को कैसे बेचा जाए, ना कि धर्म गुरु के बाद लोग कैसे आएं। तो इससे भी लोग काफ़ी कन्विंस होते हैं और इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।
संजय जी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए, कार्यक्रम को आपने चर्चा को रोचक ज्ञानवर्धक बढ़ाया बनाया। इंडिया बोल में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया, अनंत कुमार ने फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुँचाया। आज बस इतना ही, चर्चा जारी रहनी चाहिए, दीजिए इजाज़त।